खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र हो कि उसने आज की फिर सुबह हम सबको बख्श दी। हम उसके ज़िंदगी बख्श कलाम में से अपनी तरबियत और नसीहत के लिए सीखें। सो आए हम सब खुदा के बेटे और बेटियां उसके हजूर झुकें। और जैसे हमने जबूर 32 में से गाया कि वो कहता है सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। खुदावंद आसमान से अपने लोगों पर निगाह करता है और जो कोई उसका तालब है खुदावंद उनको शर्मिंदा नहीं करता और उनको ना ही फरामोश करता है। सो आए हम उस खुदावंद खुदा को पुकारें जो हमारे रास्तों को दुरुस्त करता है, जो हमारी ज़िंदगियों में अपने कलाम की नेमतों बरकतों की बारिश बरसाता है और वो चाहता है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल बने। आए हम दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा मसीह यस्सु में आसमानी बाप, आज की सुबह के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरे मुकद्दस और पाक नाम से दिन का आगाज किया, और तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी वफादारी के लिए, तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी मोहब्बत के लिए, और तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद तमाम आए हुए बहन भाइयों के लिए। आज हम जो कुछ भी सीखें हम सब के लिए बरकत का बायस, कुदरत का और तरबियत का बायस ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें जो बहन भाई कलाम खुदा को पढ़ सकते हैं, नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त उसकी 10वीं आयत। आज हम तीसरे हिस्से को, इस आयत के तीसरे हिस्से को देखेंगे और इसमें से चंद एक सच्चाइयों को सीखेंगे। और आप सबको याद है कि बाइबल मुकद्दस की ये किताब जो हमने शुरू की हुई है, जो ये ख़त है, जब हम इसको देखते हैं तो इसकी बड़ी तस्वीर इस तरह हमें रूहानी तौर पर नज़र आती है कि ईमानदार रूहानी तौर पर पैदा होता है और फिर उसका इस ज़मीन पर जीने का मकसद और फिर इस ज़मीन पर रहते हुए खुदा के मंसूबे को पूरा करना, यानी कि रूहानी जंग में लड़ना, मसीही सूरमा होते हुए मसीह के लिए ज़िंदगी गुजारना। और इसे हम इस तरह बाइबल मुकद्दस की इस किताब जिसे इफ़सियों का ख़त कहा गया है, पहले तीन बाप में हम देखते हैं कि हम कौन हैं, हमारी हालत, हमारी बुनियाद, हमारी हकीकी जगह, हमारा वो तमाम हमारी बरकात और हमारे हालात जो यीशु मसीह में हैं कि हम रूहानी तौर पर दौलतमंद हैं, रूहानी तौर पर हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अनोखे लोग हैं। सो ये पहले तीन बाप में पालूस रसूल चाहता है, जैसे हम बहुत दफ़ा कोई बात किसी के जहन में उतारने के लिए बार बार उसे कहते हैं, पालूस रसूल यहाँ पर सादा सी बात ये करना चाहता है कि हमारे दिल की तख्तियों पर ये बात गहरे तौर पर लिखी जाए कि ये बात हमारी तरबियत और नसीहत के लिए लिखी जाए ताकि हम इसे कभी ना भूलें। सो पहले तीन बाप में ये हमें पालूस सिखाता है और आज हम इसमें से सीखेंगे। और चौथे बाप की पहली आयत से लेकर छठे बाप की 9वीं आयत तक पालूस रसूल चाहता है कि हमने जो कुछ सीखा है उसका इस्तेमाल करें। और वो किस तरह कहता है, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी अपने बुलावे के मुताबिक उस ज़िंदगी को गुजारो। और चलना कैसे है, नूर में चलना कैसे है, पाकीज़गी में चलना कैसे है, मसीह की रफाकत में चलना कैसे है, रूह की मामूरी में कैसे अच्छे मसीही बनना है, कैसे अच्छे ईमानदार बनना है, कैसे हम इस अंधेर नगरी की दुनिया में, इस ना अमीदी की दुनिया में, भूले भटके हुए लोगों में किस तरह हम मसीह के पैगाम को पहुंचा सकते हैं कि उसी ने कहा है कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। सो ये बात पालूस रसूल हमारे जहनों में उतारना चाहता है कि हम इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने का मकसद हमारा क्या है। मसीह की मनादी, मसीह की खुशखबरी दूसरों तक ले जाना, मसीह के लिए ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि हम अपने नहीं बल्कि उसके खून खरीदे हैं। और फिर छठे बाब की 10वीं आयत से बाब के अखीर तक पालूस रसूल इस बात को बयान करता है कि तुमने सीख लिया है कि किस तरह बैठना है, अब तुमने सीख लिया है कि किस तरह चलना है, अब खड़े होने का वक्त है, उस अमान में कायम रहने का वक्त है जिसमें वो इस बात को बयान करता है। इफिसियों छठा बाप उसकी 10वीं आयत से बाप के अखीर तक, खुदावंद में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, अबलीस और उसके मंसूबों के मुखालफत में खड़े हो, और तुम्हें खुदावंद का जोर, कुदरत, ताकत, उसका कलाम, उसकी हिकमत, उसकी दनाई, हर एक चीज़ हासिल है। सो आए हम इस किताब में से जो अनोखी किताब है, इस कलाम में से जो खुदा का मुंह बोला हुआ कलाम है, जो आदमियों के वसीला से खुदा ने लिखवाया, जिसे बाइबल मुकद्दस कहते हैं, मेरे साथ निकालें इफिसियों 2 बाप उसकी 10वीं आयत। और यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस कहता है, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यसु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। पहली बात हमने सीखी कि हम उसकी कारागरी हैं, यानी कि जैसे आपके कपड़ों को बनाने वाला दर्जी है, जैसे मकान को बनाने वाला मिस्त्री है, जैसे कुर्सियों को बनाने वाला बढ़ई है, फर्नीचर का काम करने वाला, जैसे जूतों को सिलाई करने वाला मोची है, वैसे ही हमारा बनाने वाला, हमें पैदा करने वाला कौन है? खुदा है। अपालूस कहता है क्योंकि हम उसी की, किसकी? उसी की। वो आसमानी खुदावन खुदा की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हम उसकी कारागरी हैं, उसका फन है, उसकी उम्दा अनोखी महारत है, उसका हुनर है कि उसने मिट्टी के लौंदे को लिया और हम मिट्टी को उसने अपने ज़िंदगी का दम फूका और हम जीती जान हुए, जैसे आदम और हवा के साथ उसने किया, जैसे आदम को उसने बनाया और फिर उसमें उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका और वो जीती जान हुआ। सो पालूस सादा तौर पर कहता है हम उसकी कारागरी हैं, हमारा बनाने वाला कुम्हार, जिसे यर्मिया के खत में, जिसे यसाया के खत में, जिसे यूहन्ना की अंजील में कहा गया है हमारा बनाने वाला, इब्तदा ही से मौजूद खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को वजूद बख्शा। ये बातें हमने सीखी। और फिर दूसरी बात जो हमने सीखी, दो हिस्सा सीखा, वो था और मसीह यसु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। आए इस पर गौर करें, हम सब मसीह यसु में ये नई पैदाइश, जिसे नए तौर पर पैदा होना कहा गया है, यसु मसीह पर ईमान लाना कहा गया है। सो अपने जहन में इस सच को अच्छी तरह जड़ पकड़ने दें कि कोई भी मसीही पैदा नहीं होता, मसीही होने के लिए यसु मसीह पर ईमान लाना ज़रूरी है। जैसे यसु मसीह उस रात जब निकुदीमस उसके पास आया, उसके उस रात के अंधेरे में, और उसने पूछा कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, तो यसु मसीह ने कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। नए सिरे से पैदा किस तरह होते हैं? यूहन्ना की इंजील 3 बाप उसकी 16 आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और उसने अपना इकलौता बेटा खुदावन यसु मसीह बख्श दिया, दे दिया सलीब पर कुर्बान होने के लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, उसका यकीन करे, उसकी मौत को मान ले के वो मेरे लिए मुआ है, उसने गुनाहों का कफारा सलीब पर मेरे लिए दिया है, वो हलाक नहीं होगा, वो दोजक में नहीं जाएगा, वो हमेशा की आग में नहीं जलेगा, वो खुदा के गज़ब का सामना नहीं करेगा, बल्कि क्या लिखा है, हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। ऐसी ज़िंदगी जो ख़त्म नहीं होगी, ऐसी ज़िंदगी जो हमेशा हमेशा तक रहेगी, और इसी ज़िंदगी को खुदावन ने हमें बख्शा है। किसके वसीला से? ईमान के वसीला से। ओमान किस पर? खुदावन यीशु मसीह पर। लोग बहुत से ईमान रखते हैं, जैसे यकूब के ख़त में यकूब बयान करता है कि शायतीन बदरूहें भी ईमान रखती हैं, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखती क्योंकि वो उसका इनकार करती हैं। सो हम ईमान रख सकते हैं कुर्सी पर, हम ईमान रख सकते हैं पंखे पर, लेकिन पंखा या कुर्सी हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो बेजान है। सो इसीलिए पालूस कहता है खुदावंद यीशु पर ईमान लाने से निजात है। इसीलिए वो इमाल 4 बाप उसकी 12 या 14 आयत में कहता है कि आसमान और ज़मीन के तले, आसमान पर और ज़मीन के तले कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से आदमी निजात पा सके। सो क्या लिखा है, और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। हम उसकी मखलूक हैं, किस लिए मखलूक हुए हैं, किस लिए पैदा किए गए हैं, किस लिए हम नए तौर पर पैदा हुए हैं, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, उसके काम को, उसके मंसूबा को पूरा करने के लिए। आप जो कुछ करते हैं इस ज़मीन पर वो खुदा की नज़र में बहुत ही अहम है। जैसे बहुत दफ़ा कोई बच्चा गलत काम करे तो माँ बाप कहते हैं कि क्या तुझे मेरी इज्जत का ख्याल नहीं, ऐसा ही होता है ना। तो ऐसी ही बात है कि जैसे हमारे ज़मीनी माँ बाप हमें कहते हैं कि हमने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया, हमने तुम्हें इसलिए पासा पोला नहीं है, इसलिए हमने तुम्हें पाला पोसा नहीं है, पाला पोसा नहीं है, देखभाल नहीं की कि तू हमारी इज्जत को ख़राब करे, बदनाम करे, बल्कि हमारी ये ख्वाहिश है कि तू हमारे नाम को 4 चांद लगाए, ना कि हमारे नाम को दाग लगाए। ऐसी ही सब माँ बाप की ख्वाहिश है ना जी। आप जितने भी माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी माँ बाप बैठे हैं, सब की ये ख्वाहिश है कि आपका बेटा, आपकी बेटी कोई ऐसा अनोखा, अजीब और अच्छा काम और कारनामा करे जिसके वसीला से आपके नाम को इज्जत मिले। और ऐसी ही बात खुदावन खुदा चाहता है कि हम जो कुछ भी ज़मीन पर करें इस तरह जान के करें, जैसे हमने पिछले दिनों में सीखा कि उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से करने के लिए हमारे लिए तैयार किया था। सो मेरे साथ एक हवाला निकालें, मत्ती की अंजील उसका 5वां बाप उसकी 13वीं आयत गालबन। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों से बातचीत करते हुए कहते हैं, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाए, फिर वो किसी काम का नहीं सवाए इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। बहुत दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो आदमियों के सामने हमारी इज्जत ख़राब हो जाती है। और 15वीं आयत में क्या लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। हम छुप नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर जो नूर चमक रहा है वो किसी भी तरह छुप नहीं सकता। अगर छुपेगा तो सिर्फ़ हमारी अपनी मर्ज़ी से, जब हम उस नूर को छुपाएंगे। क्या लिखा है 15वीं आयत, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब रोगों को रोशनी पहुंचती है। तुम नेक अमाल करने के वास्ते मखलूक हुए हो। पालूस कहता है, यसु मसीह कहता है कि तुम रोशनी से वाकिफ हो, अब तुम्हारी रोशनी कैसे चमक रही है। हम किस तरह मसीह का नूर को चमकाने का वसीला बन रहे हैं। या फिर बहुत से ईमानदारों को ये मसला होता है कि वो ईमानदारों से खुश नहीं और वो कुछ भी करना नहीं चाहते सिवाय लड़ाई झगड़े के। इस तरह हमारे आसमानी बाप के नाम को इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि 16वीं आयत में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी, जिस तरह कोई चिराग जलाकर उसे छुपाता नहीं बल्कि दूसरों को रोशनी देने के लिए कहता है कि इस रोशनी को देखो, वैसे ही यीशु मसीह कहता है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है ताजीम 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 करें। हम दुनिया का नूर हैं, सो हम इस नूर को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज सवाल इसको इस सवाल को अपने साथ लेकर जाएं कि यीशु मसीह ने कहा हम दुनिया का नूर हैं, क्या हम चमक रहे हैं या नहीं। आज कौन सी बातें हैं जो हमें चमकने से रोक रही हैं। आज कौन सी दीवारें हैं जो हमें छुपा रही हैं। आज कौन सी ऐसी आजमाइश है जो हमें फिक्र में डालती है कि उसकी गवाही ना दी जाए। कौन सी जंजीर है जो हमें रोकती है कि उसके नाम को जलाल ना दिया जाए। ये आपके और खुदा के दरमियान है। हम सबको किसी ना किसी आजमाइश का, किसी ना किसी मसले का सामना है। इसलिए खुदा पर तवक्कल करें, खुदा पर यकीन करें, खुदा पर अपना ईमान रखें और यीशु मसीह के वादों को कभी नहीं भूलते, कभी ना भूलें। इसलिए हम सब मकसद के लिए पैदा हुए हैं और हमारा मकसद, हमारी जो बुलाहट अजीम है, इसके बदले में बहुत बड़ा अजर मिलेगा। इसलिए आए हम खुदा के हुजूर झुकें और अपने आप से ये सवाल करें कि मैं किस तरह चमक रहा हूँ, चमक रही हूँ। क्या मैं अपने आप को छुपा रहा हूँ, छुपा रही हूँ। ये सवाल आपके और खुदा के दरमियान है, सो इस पर ज़रूर गौर करें कि मैं किस तरह खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो रहा हूँ, हो रही हूँ। खुदा बाप इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और हम मुल्के पाकिस्तान में नूर की मानद चमकें और हमारी रोशनी जो रूल कुद्दस की रोशनी हम में है दूसरों तक पहुँचे और बहुत से लोग यीशु मसीह को कबूल करें। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।